17 स्त्री मुक्ति सामाजिक न्याय। 21वीं शती की शुरुआत में ऐसे कई उपन्यास आए जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति सशक्त ढंग से हुई है। अंतिम अरण्य, गिलगडू, समय सरगम, शेष कादंबरी, विश्रामपुर का संत ऐसे ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पुत्र वृद्धावस्था का सहारा होता है। भारतीय समाज की यह मान्यता टूटी है, बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर विदेश चले गए हैं या स्वदेश में ही अन्यत्र नौकरीरत हैं। पाश कॉलोनियों में रहने वाले वृद्ध वृद्धा नितांत अकेलेपन की गिरफ्त में हैं। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपन्यासों में ये वरिष्ठ नागरिक शारीरिक कमजोरियों के होते हुए भी अपने आप को सक्रिय बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं और अपनी उम्र को पीछे धकेलते हैं। उन्हें न मृत्यु की इच्छा है और न ही उन पर उसका आतंक। अंतिम अरण्य में अपवाद अवश्य है। शेष कादंबरी में रूबी दी भी 70 वर्षीय महिला हैं। घुटनों के दर्द से पीड़ित होते हुए भी वे बिला नागा निश्चित समय पर सोशल वर्क करने के लिए परामर्श नामक संस्था में जाती हैं। परामर्श उनकी निजी संस्था है। वैयक्तिक दुखों को सहते हुए उनमें एक बार मृत्यु की इच्छा जागृत हुई थी 40 वर्ष की अवस्था में, किंतु जब सामाजिक कार्य में अपने जीवन को संलग्न करती हैं तो उन्हें जीवन का एक नया अर्थ मिल जाता है। पारिवारिक और सामाजिक हिंसा की शिकार युवतियों की उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करती हैं। उपन्यास कलात्मक प्रयोगों की संपन्नता और सजगता के साथ जिस विषय को अधिक तरजीह देता है वह स्त्री की समस्याएं ही हैं। दूसरे शब्दों में उपन्यास शेष कादंबरी स्त्री विमर्श के एक नए आयाम कुष्ठ में वृद्धावस्था को व्याख्यायित करता है। जिन स्त्रियों को पेट में ही मारने का कुचक्र रचा जाता हो, शैशवावस्था से ही जिनको यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता हो, वे स्त्रियां जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपने होने की सार्थकता सिद्ध करें, जिंदगी अपने लिए अत्यंत जरूरी लगे तो जाहिर है स्त्रियों में आत्मविश्वास आया है। इसी आत्मविश्वास से आप्यायित है रूबी दी का व्यक्तित्व। किंतु किसी समय उनमें भी आइडेंटिटी क्राइसिस थी। रूबी दी का जीवन स्मृतियों और आत्मकथा लेखन में अभिव्यक्त होता है, कैमरे की रील की भांति नहीं, खंडों खंडों में। उनमें अंतःसूत्र जरूर है जो सजग कथा शैली से ही संभव होता है। उनका स्वयं का जीवन सपाट नहीं रहा। 11 साल की उम्र में ही उनकी आत्मा में जो सुई चुभी वह अस्तित्व संकट था। माँ मामी के संवाद से उसे यह मालूम होता है कि वह पालिता पुत्री है। उसे सभी शक की निगाह से देखते हैं। पालने वाली माँ कहती है, कलकत्ते के सबसे पुराने रईस परिवार की रईसी का खून तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारा खून अलग है। इन्वर्टेड कॉमा पर पिता तो नहीं परंतु पितृपक्ष का परिवार, ससुराल वाले और उनकी स्वयं की बेटियां भी उन्हें सहज रूप में नहीं ले सकी। जीवन के उत्तरार्ध में भी आइडेंटिटी क्राइसिस का दंश उनमें बना रहा। उन्हें मलाल था कि उन्हें गोद क्यों नहीं लिया गया। कहना न होगा कि अलका सरावगी के इस उपन्यास में अस्तित्ववाद की गूंज अनगूंज अंत तक बनी हुई है। अस्तित्व की पहचान या अस्तित्व की स्वीकृति से जीवन में निश्चित रूप से स्फूर्ति आती है। शिक्षिता रूबी ससुराल में भी मानसिक संतुष्टि नहीं पा सकी। उनके पिता की हैसियत जैसा ससुराल नहीं था। कमतर आर्थिक सामाजिक हैसियत के होते हुए भी रूबी को सास जिठानी का उत्पीड़न सहना पड़ा। मन मुताबिक दहेज न मिलने के कारण उसे यह एहसास कराया गया कि सतपीढ़िया शाह की लड़की कोई काम सही नहीं कर सकती। उनमें कई दोष निकाले गए थे, एक पढ़ी लिखी होना, दो औरों की तुलना में अलग होना, अपना पैसा होना जो औरों के पास नहीं था। उत्पीड़न के कारण ही गर्भावस्था में वे एनीमिक हो जाती हैं, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दिया गया। रूबी दी निष्कर्ष निकालती हैं इन्वर्टेड कॉमा में, औरत तूने जब भी किसी कोने में पुरुष से अलग अपना कुछ बनाया है तो तुझे इसकी कीमत देनी पड़ी है। इन्वर्टेड कॉमा बंद पृष्ठ संख्या 78। पति सुधीर उत्पीड़क तो नहीं थे किंतु मूलाधिकारों से उदासीन और अल्पभाषी थे। परिणाम स्वरूप वे भयंकर मानसिक रोगी हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक तक लगे निभाने की कोशिश में। स्त्रियों पर घर तोड़ने का प्रायः आरोप लगाया जाता है। सच यह है कि स्त्रियां एक सीमा तक ही सह पाती हैं। सजग और सतर्क स्त्रियां, रूबी दी ऐसी ही स्त्री थीं। यतः उन्होंने ससुराल से अलग रहने का फैसला किया। उत्तरोत्तर वह अलग और अकेली होती गईं। पति की मृत्यु हो जाती है और दोनों बेटियां विदेश जा बसती हैं। नामालूम क्यों बेटियों से आईएसटी पर कोई संपर्क नहीं होता, जबकि नतिनी कादंबरी से एसटीडी पर बारंबार बातचीत होती है। कथा विन्यास के इस सूत्र कथा सूत्र को लेखिका ने छोड़ दिया है। भारत में रहने के कारण संभवतः नतिनी नानी से जुड़ती है, नानी को लिखने के लिए प्रेरित करती है, आत्मकथा नहीं कथा लिखवाती है उनसे, बकौल कादंबरी। कथा का सच एक मुखौटे का सच है, मुखौटा यानी कि मास्क, जो आपको कथा कहने के लिए लगाना ही पड़ता है। और यह सच बिल्कुल असली सच है, इसे लगाए बिना आप सच बोल ही नहीं सकते, बल्कि यही असली सच है। लेकिन यह सच प्रतिसंसार का सच है, एक ऐसी दुनिया का जिसे आप रचते हैं। यहाँ आप प्रजापत ब्रह्मा हैं। पृष्ठ संख्या 147। वस्तुतः उपन्यास अपनी बहुआयामी कथा कला के कारण अनूठा है। रूबी दी प्रमुख पात्र हैं और कथा लेखिका भी, इसीलिए उपन्यास में लेखनी के कई पहलुओं को व्याख्यायित विश्लेषित किया गया है। कादंबरी भी लेखन कार्य से जुड़ी हुई है। नतीजन पत्र, रिपोर्ट, आत्मकथा, कथा और आलोचना सभी का उपयोग कृति में हुआ है और उन पर तार्किक टिप्पणियां भी हैं। रूबी दी और कादंबरी के वार्तालाप में दो युगों, मूल्यों के अंतराल को भी प्रकाश में लाया गया है। अविवाहित कादंबरी अपने पुरुष मित्र के साथ रहती है, परंतु चाहते हुए भी रूबी दी उससे कोई सवाल नहीं कर पाती। रूबी दी अस्वस्थ हैं, अतः उसे देखने आना चाहिए, मगर कादंबरी को ऐसे समय में जाना परेशान करना लगता है। आत्मकथा या कथा लेखन के बहाने पूरे उपन्यास में आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन का सिलसिला बना रहता है। जिंदगी में भोगे हुए दर्द से छुटकारा सताई हुई स्त्रियों में पाती हैं। 30 वर्षों से पर्यवेक्षण में लगी रूबी दी स्त्री समस्याओं, कुछ में उत्पीड़न के निराकरण में प्रयासरत हैं, लेकिन समस्याएं तो जस की तस बनी हुई हैं। वैसे उपन्यास में स्त्री विमर्श उत्तेजित स्वरों में उद्घाटित नहीं है। रूबी दी की अवस्था के मुताबिक ही मध्यम स्वरों का रेखांकन हुआ है। सेवा कार्य के शुरुआती दौर में गुड फ्रेंड्स सोसाइटी के मिस्टर वासुदेव मड ने रूबी को सीख दी थी, इन्वर्टेड कॉमा में, दूसरे लोगों के जिनकी मदद करने तुम घर से बाहर निकलती हो, दुख, कष्ट, चिंताएं कभी वापस अपने घर मत ले आओ, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर भी रूबी दी के हृदय में अपना स्थान सविता नामक उत्पीड़िता स्त्री बना लेती है। बाद में 70 वर्षीय रूबी दी को यह बोध होता है कि इस उम्र में दूसरों के लिए घर बनाना उचित नहीं है। उपन्यास में प्रारंभ से लेकर अंत तक रूबी दी के समानांतर जिस स्त्री की उपस्थित बनी होती है वह सविता है। वह परामर्श संस्था में नियमित आती है। उसे पिता, भाई और पति सभी प्रवंचित करते हैं। वह अकेली सिलाई वगैरह कर आजीविका चलाती है। पुरुष पिता, पुरुष भ्राता के प्रति तो सिर्फ क्षोभ है, परंतु पति के प्रति जो उसे कदमपोश समझता रहा है, उससे हर्जाना वसूलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। रूबी दी के दूसरे विवाह की सलाह को अनसुना कर देती है। वह सदैव हस्तरेखाएं देखते रहना उसके पारंपरिक संस्कार को दर्शाता है। दरअसल सविता संस्कार और विचारों की द्वंद्वात्मकता में जीती तो है, परंतु नारी अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। सविता उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो न्याय प्राप्ति के लिए संघर्षशील होती हैं, सहकर अन्याय को बढ़ावा नहीं देती। शेष कादंबरी में पारिवारिक हिंसा की शिकार युवतियाँ अधिक हैं। कहीं वे संस्कारवश चली जाती हैं तो कहीं आत्मीय रिश्तों से रीतती हैं। इंजीनियर पिता की बेटी फरहा धार्मिक और पारंपरिक संस्कारों के कारण ही मानसिक रूप से अस्वस्थ पति के प्रति समर्पण का भाव रखती है। अम्मी अब्बा के मना करने पर भी ससुराल लौटना चाहती है। हिंदू हो या मुसलमान, औरत संस्कारों की जकड़बंदी में वह नियतिवाद की गिरफ्त में है। वैवाहिक संस्था के प्रति उनमें आस्था कुछ अधिक है। रंडी की मंडी में बिकने वाली युवती माया बोस के बहाने पनपती वेश्यावृत्ति के मूल कारणों की ओर लेखिका ने संकेत किया है। परिवार नियोजन के विभिन्न साधन और भोगवादी प्रवृत्ति का उठान वे कारक हैं जिनसे देह शुचिता की भावना का विलुप्तीकरण हुआ है। कॉलेज की छात्राएं हों या घरेलू स्त्रियां, उनमें नैतिकता का बोध नहीं है। धनार्जन या मौज मस्ती प्रमुख कारण है। त्रासद स्थिति तब होती है जब सीधी सादी लड़की को जबरन सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। माया बोस का यौन शोषण उसका पिता ही करता है और यही बताने की विकलता में वह 2 वर्षों तक परामर्श संस्था में आती रही। पिता रूपी सांप से डसी जाकर ही वह विषकन्या बनती है। माया बोस रात भर मंडी में बिकती है। जब दुनिया जागती है तब वह अपने कस्बे पहुंचने के लिए स्टेशन पर खड़ी होती है। रूबी दी की सहेली नीना 8 सालों से वेश्याओं के बीच काम करती है। कादंबरी के बहाने लेख का प्रश्न उठाती है कि सोशल वर्क करने वाले सोशल जस्टिस कितना दिला पाते हैं। इसी निमित्त उसका मित्र गौतम वेश्याओं के अधिकार के लिए पार्लियामेंट के सामने धरना देता है। रूबी का व्यक्तित्व तो उन स्त्रियों जैसा नहीं है जो दिया तले अंधेरा का मुहावरा चरितार्थ करती हैं। अपर्णा बनर्जी का नाम इसी प्रसंग में लिया जा सकता है। मजदूर स्त्रियों के खिलाफ संस्था चलाने वाली अपर्णा की 14 वर्षीय नौकरानी आत्महत्या कर लेती है। जाहिर है दिखावा करने वाले ऐसे ही लोगों से दुनिया अटी पड़ी है। 20 साल की उम्र में आभा जैन की बेटी का आत्महत्या करना भी पुरुष वर्चस्व समाज की विसंगतियों का ही एक संकेत है। यौन हिंसा की शिकार न जाने कितनी युवतियों का गर्भपात रूबी दी मेरी स्टोप्स में कराती हैं। सभ्यता के विकास के साथ स्त्रियों के प्रति शोषण असमानता का भाव दूर नहीं हुआ है। स्त्रियों को आज भी देह समझा जाता है और उसकी देह पर उसका अधिकार नहीं है। नारी उत्पीड़न का एक आयाम प्रेम भी है। अंग्रेजों के उपनिवेश भारत में उच्च वर्ग अंग्रेजों के साथ उठता बैठता था। रूबी दी की बुआ का प्रेम एक अंग्रेज से हो गया था और विवाह न हो पाने के कारण वे जल मरी थीं। थिएटर रोड के मकान के एक बंद कमरे का राज यही था जो उन्हें बहुत बाद में मालूम हुआ था। संभवतः ऐसा ही अंतर संघर्ष रहा होगा बेटी गौरी और माँ रूबी में, जिनके कारण उनके संपर्क टूटे होंगे। कभी रूबी दी ने भी एक मुसलमान युवक से प्रेम किया था, लेकिन 1946 के कलकत्ता के हिंदू मुसलमान के दंगे और विभाजन की त्रासदी अर्थात सांप्रदायिकता के कारण आदिल उसे ठुकरा देता है। रूबी का यह आदर्श जमींदोज हो जाता है कि आदिल अपने इस्लाम पर कायम रहेगा और वह अपने कृष्ण भक्ति पर। उपन्यास में निश्चित ही यह संकेत है कि धर्म जाति और सांप्रदायिकता की मार औरत के तन मन पर अधिक पड़ती है। यद्यपि प्रेम में रीतता तो पुरुष भी है। देवी दत्त मामा ने अपने असफल प्रेम को स्मरण करने के लिए ही भतीजी का नामकरण रूबी किया था। उनकी प्रेमिका का नाम रूबी था। स्त्री विमर्श पर जोर देते हुए भी अलका सरावगी ने उपन्यास को बृहत्तर संदर्भों से भी जोड़ा है। कादंबरी और देवीदत्त मामा का उपयोग इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है। शरीर उपस्थित न होते हुए भी देवीदत्त ऐसी शख्सियत हैं जिनके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधाओं के विचारों और क्रियाकलापों की चर्चा की गई है। गांधीवाद, मार्क्सवाद और लोहियावाद पर भी विचार मंथन हुआ है। फिलहाल उपन्यास में नवीन कथा प्रयोगों के जरिए उपन्यासकारों के सरोकार को ही प्राथमिकता मिली है। स्त्री की जो पीड़ा है उसे स्त्री ही अधिक शिद्दत से महसूस कर सकती है। स्त्री किसी भी उम्र में क्यों न हो, स्त्री होने के बोध से वह मुक्त नहीं होती। परामर्श संस्था को चलायमान रखना न्याय प्राप्ति के लिए ही संघर्षशील होना है। औपन्यासिक शीर्षक में भी व्यंजना शब्द शक्ति है। कादंबरी द्व्यर्थी शब्द है। मराठी भाषा में कादंबरी शब्द उपन्यास का पर्याय है। उपेक्षिता उत्पीड़िता स्त्री को न्याय और समानाधिकार दिलाने के लिए कादंबरी लिखा जाता रहेगा। रूबी दी कादंबरी कोष्ठ में नथनी में लेखन की संभावनाएं देखती हैं। उपन्यास मृत्यु विरोध में जीवन का अभियान भी है। सतत सक्रिय और चुस्त रहने की कोशिश, जीवन से पलायन नहीं, पलायन के विरुद्ध संघर्षशीलता, कलकत्ता वाया बाईपास से जो प्रसिद्ध लेखिका को मिली कथा कला की नूतनता के कारण वह आग्रह शैल्पिक प्रयोग कोष्ठ में प्रस्तुत उपन्यास के भी आद्यंत बना रहा है। कथा कला के कारण भी शेष कादंबरी की अहमियत है। विशिष्ट पाठक ही उपन्यास से जुड़ सकते हैं। रूबी के व्यक्तित्व जैसा ही औपन्यासिक स्वरूप है। रूबी दी की बेटियां उन पर आरोप लगाती हैं कि वे स्नाब हैं, हिप्पोक्रेट हैं। हालांकि रूबी गुप्ता अपने भयावह अकेलेपन को दूर भगाने की कोशिश में ही गुड फ्रेंड्स सोसाइटी, वामा ग्रुप और परामर्श में उनकी संलग्नता होती है आत्महत्या के विरुद्ध।